नमस्कार, ये रेन लवर शो है। हमारी घड़ी में ठीक 6:30 हुए हैं और मैं खुशबु गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा प्रोग्राम इश्क की बात में। ये प्रोग्राम एक जरिया है, एक कोशिश है हमारी आवाज आप तक पहुंचाने की और आपकी फरमाइशें सबको सुनाने की। चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले गीत कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है से। इस गीत की फरमाइश की है मीना, संजू, बंटी, गुड्डू, आस्था, नलिनी और प्रेरणा ने।
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मैं से पहले सितारों में बस रही थी कहीं तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए कभी कभी मेरे दिल गैसुओं की घनी छांव है मेरी खातिर ये होंठ और ये बाहें मेरी अमानत है कभी कभी मेरे दिल।
जिंदगी भी एक अजीब मसला है, उलझता ही जाता है और सुलझाने जाओ तो वक्त की सलाइयों पर दिन रात का सुख दुख का एक ताना बाना बुन देता है। और इसी मशरूफियत में हमें जुगनुओं की तरह कुछ कहानियां मिलती हैं, कहानियां जो चलती तो बस जुगनुओं की तरह एक रात भर को हैं पर हमारे दिल में रह जाती है, उनकी रोशनी हमारी रूह का एक हिस्सा बन जाती है। तो कभी ना भूल पाने वाली एक ऐसी ही दास्तां आज हम आपसे रूबरू करने आए हैं।
सभा, आज 4 के स्लॉट के लिए स्टोरी रेडी है।
स्टोरी मैम, आपने तो स्टोरी मनहर को करने बोला था ना।
सभा, मैंने मनहर को एक दूसरे काम से कहीं भेजा है। सो नाउ दिस इज योर जॉब। I want the story for the 4 slot. Pronto.
But ma'am, 11 बज रहे हैं और मेरे पास कोई डाटा भी नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, मैं कैसे करूँगी ये?
सभा, मुझे नहीं पता तुम ये कैसे करोगी, but make it happen. I want a story for 4 slot and mind it. It must worth my time.
Okay, but मनहर को भी किसी दिन एक्सचेंज में मेरा एक स्लॉट लेना होगा।
फाइन सभा. अच्छा ये बताओ वो लिस्ट रेडी कर ली?
हाँ वो प्लेलिस्ट ना वो रेडी है एंड मैंने उसको थीम के हिसाब से सॉर्ट भी कर दिया है.
प्लेलिस्ट नहीं सभा, लिस्ट, इंटरव्यूज की लिस्ट. रिमेम्बर मैंने दो दिन पहले बोला था.
अच्छा अच्छा वो लिस्ट. मैम वो लिस्ट तो मैंने बनाई थी, ईमेल्स एंड कॉल्स भी किए थे, बट समवन इज़ आउट ऑफ टाउन, समवन इज़ सिक, समवन इज़ बिजी, कोई भी अवेलेबल नहीं है.
सभा आर यू टेलिंग मी यू हैव नो वन टू इंटरव्यू? लाइक इतने आर्टिस्ट भरे पड़े हैं, दे आर लाइंड अप टू फीचर ऑन आर शो एंड तुम एक आर्टिस्ट नहीं ढूंढ पाई जिसकी इंटरव्यू ले जा सके, जिसकी स्टोरी सुनने लायक हो? सभा तुम मेरा शो बंद करवा दोगी.
मैम अगर मैं ना रहूँ तो यहाँ का कोई भी काम नहीं होगा. एज फॉर द लिस्ट, लिस्ट तो बनाई थी मैंने, मतलब हर कोई बिजी है तो मैं कर क्या सकती हूँ?
सभा आई डोंट नो हाउ यू मेक इट पॉसिबल बट मुझे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी चाहिए. आई वॉन्ट एन आर्टिस्ट टू इंटरव्यू, फाइंड वन और क्रिएट वन.
मैम बट मैम मैम लिसन मैम, ओ गॉड काट दिया यार, खुद को क्या समझती हैं, मैं कोई बंधवा मजदूर हूँ क्या?
मैडम कोई इंटरव्यू के लिए आया है, आपने बुलाया है क्या?
क्या नाम है?
कनक कपूर के नाम से.
अच्छा भेजो अंदर. हेलो मिस,
मिस कनक कपूर.
हेलो मिस कनक कपूर,
मैंने आपको मेल लिखी थी, रिमेम्बर? कोई 2 महीने गुजर गए होंगे, आप मेरा इंटरव्यू लेना चाहती थी. तब मैं चंडीगढ़ में थी और आपने कहा था दिल्ली आऊं तो आपसे आकर मिल लूं.
ओ यस 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 मैम, यस 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 आई रिमेम्बर. वेलकम टू दिल्ली, वेलकम टू रेन लवर कनक. प्लीज टेक अ सीट, प्लीज टेक अ सीट. सो कनक, शैल वी टॉक ओवर सम कॉफी एंड सम कुकीज?
श्योर.
रमन, ऑफिस में 2 कॉफी और कुछ सैंडविचेस भेजो. यप. सो हाउ आर यू कनक? व्हेन वी कॉरेस्पॉन्डेड यू वर बिजी विद समथिंग, बहुत बहुत मसरूफ थी आप.
आई एम फाइन सभा, थैंक यू फॉर आस्किंग. जी उस वक्त माई डैड वॉजंट वेल, अब ही इज डूइंग फाइन.
सो कनक इट्स बाय चांस कि आज मेरे पास वक्त भी है और एक ज़रूरी इंटरव्यू की भी मुझे बहुत ज़रूरत है, तो यू आर हेयर, आई एम हेयर, तो आज ही कर ले इंटरव्यू.
आज ही?
वाई नॉट कनक, आप यहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ, हमारे पास वक्त भी है. वो हिंदी फिल्म में कहते हैं ना, मौका भी है, दस्तूर भी है एंड समथिंग समथिंग भी है.
जी वो यूँ कहते हैं कि रस्में दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है.
यस यस यस, रस्में दुनिया. कनक पहले हमें अपने बारे में कुछ बताइए, हमारी मुलाकात खुद से करवाइए.
मैं कोई ऐसी खास शख्सियत नहीं हूँ, मेरे बारे में बताने को ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यूँ समझ लीजिए कि एक उम्र लेकर आए हैं, वो काट रहे हैं.
कनक ये तो फिलॉसफी हो गई, वो क्या कहते हैं हिंदी में, फलसफा हो गया.
यस बट जिंदगी तो अपने आप में ही एक फलसफा है, कि उम्र दराज मांग कर लाई थी दिल चार, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में.
तो किसकी आरजू थी, किसका इंतजार था?
हर किसी को किसी न किसी की आरजू होती है, मैं भी मुख्तलिफ नहीं हूँ, तो जिसकी आरजू थी बस उसी का इंतजार है.
तो कनक इंतजार था या अब भी है?
कुछ लोग, कुछ वाकये, कुछ इंतज़ार ऐसे होते हैं सभा, जो ता उम्र आपके साथ आपका हमसाया बनकर चलते हैं. अब तो ऐसा है कि बेचैन रहें तो ठीक लगता है, कभी अगर गलती से पुरसकून लगने लगे तो तबीयत खराब लगने लगती है.
सो कनक आप मशहूर राइटर और शायर कबीर कोचर को बहुत करीब से जानती हैं. हम सब जानते हैं कि वो एक ऐसे शायर थे जो अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बार भी लोगों से, अपने फैंस से रूबरू नहीं हुए, हालांकि उनकी कहानियाँ, उनकी कविताएँ और सबसे बढ़कर उनकी शायरी बहुत पॉपुलर है, ख़ास तौर पर से हमारे यूथ में.
जी हाँ, कबीर एक बहुत ही प्राइवेट इंसान थे, उन्हें लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने हमेशा ही मीडिया और रिपोर्टर से दूरी बनाकर रखी।
क्या ये तन्हाई वो जो बरकरार रखना चाहते थे, ये एक प्रोफेशनल क्राइटेरिया था या एक पर्सनल नीड टू स्टे आइसोलेटेड?
मैं आपको एक बात बताती हूँ सबा, दुनिया में कोई भी शख्स अकेला अपनी खुशी से नहीं रहना चाहता। अगर कोई ये कहता है कि उसे अकेला रहना पसंद है, तो यकीन मानिए कि वो झूठ बोल रहा है। और जहाँ तक कबीर की बात की जाए, तो he used to be the life of the party at one point of time. But कुछ हादसे, कुछ मोड़ ऐसे आए जिसने उनको एक लोनर, एक खामोश इंसान बना दिया। उसके बाद वो कुछ कहते नहीं थे, वो लिखते थे।
तो कनक, आज आप अपनी नज़र और नज़रिए से हमें कबीर कोचर जी से मिलवाइए और उनके बारे में हमसे कुछ शेयर कीजिए, क्योंकि उनके फैंस बड़े ही क्यूरियस हैं उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी पर्सनालिटी के बारे में और जानने के लिए।
बिल्कुल, मैं आपके सवालों का पूरी ईमानदारी से जवाब देने की कोशिश करूँगी।
कनक, हमारे लिसनर्स आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी और कबीर कोचर की पहली मुलाकात कब, कहाँ और कैसे हुई?
मेरे नाना एक रिटायर्ड जज थे, उन्हें पार्टीज देने का बड़ा शौक था, और उनके ख़ास दोस्त कपिल राज कोचर, जो कि कबीर के दादा थे, वो मेरे नाना की पार्टी में आए। उनके साथ कबीर भी थे, तब मैं उनसे पहली बार मिली।
क्या उम्र रही होगी तब आपकी?
मैं तब स्कूल ख़त्म करके चुकी थी, कोई 17 साल की थी मैं, और कबीर कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थे, कोई 18 के होंगे। और जैसा कि सब जानते हैं, उन्होंने उसी साल ड्रॉप आउट कर दिया था।
वाओ, अ रिबेल। तो कैसी थी ये मुलाकात और उसके बाद क्या हुआ?
जैसा कि मैंने कहा, ही वॉज द लाइफ ऑफ एवरी पार्टी बैक देन। उन्होंने बहुत मज़ा किया, अपनी लिखी शायरी सुनाई, बहुत तारीफ मिली उन्हें सबसे, एंड ही एंजॉयड द कंपनी ऑफ ऑल वुमेन।
सो ही वॉज अ लेडीज मैन?
यस, ही वॉज आउट एंड आउट अ लेडीज मैन। ही वॉज सच अ चार्मर। तब टेलीफोन हमारे घर में बिल्कुल नया नया लगा था, तो उन्होंने मेरा नंबर लिया और वो अक्सर मुझे फ़ोन करते थे, कहते थे आइसक्रीम खाने चलो या सैर सपाटे के लिए चलो, पिकनिक चलो।
तो फिर ऐसा क्या हुआ जब वो इतने फन लविंग पर्सन से एक सीरियस स्ट्रॉइक पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो गए?
कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद उन्होंने घर भी छोड़ दिया, कुछ वक्त अलग अलग शहरों में अलग अलग उस्तादों के अंदर उन्होंने शायरी सीखी, अपना टैलेंट निखारा। फिर वो घर भी लौटे, उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, बिकॉज हिज फैमिली डिड नॉट फेवर हिज पैशन फॉर राइटिंग।
तो फिर उन्हें सक्सेस, शोहरत कब मिली?
कहते हैं हर कामयाब आर्टिस्ट बर्बाद होकर ही कामयाब होता है, तो वो भी जब बर्बाद हो गए हर तरह से, तब उनका आर्ट लोगों को पसंद आने लगा। ही गॉट फेमस।
आप कैसे बयां करेंगी उनकी इस क्रिएटिव सेल्फ डिस्ट्रक्शन को?
वो बहुत स्मोक करने लगे थे, हालांकि ही नेवर स्मोक्ड इन फ्रंट ऑफ एनीवन, बट अकेले में ही यूज्ड टू स्मोक अ लॉट। घर से पैसे नहीं लेते थे और तब तक करियर सेट नहीं हुआ था, तो अक्सर जेब भी खाली रहती थी। एक छोटे से रेंटेड रूम में रहते थे, और एक आध बार तो उन्होंने मुशायरा सुनने के लिए अपना खून बेचकर भी मुशायरे का टिकट खरीदा है।
वाओ, वाओ। एंड व्हाट अबाउट हिज पर्सनल लाइफ? क्या उन्होंने कभी शादी की?
नहीं, हालांकि फैमिली का बहुत प्रेशर था उन पर, बट ही स्टूड हिज ग्राउंड एंड सेड नो। He never married. जब वो शोहरत की चोटी पर थे, तब उनकी फैंस उन्हें खून से खत लिखा करती थी। He used to feel humbled. कभी फैंस का प्यार देखकर वो रो पड़ते थे।
कनक, उनकी शायरी आज अब्रॉड तक सुनी जाती है, सुनी और सुनाई जाती है। उनके ऑनर में मुशायरे होते हैं, उनके नाम पर शायरी का अवार्ड तक है, बट उनकी एक भी तस्वीर कभी किसी ने नहीं देखी। ऐसा क्यों?
He was very handsome, let me tell you. He had those champagne colored eyes, way of hair, and high cheekbones. But he hated getting photographed. कहते थे ये बिजली से चमकती है, मुझे पसंद नहीं।
तो क्या किसी के पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है?
नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी शुरुआती दौर की कुछ तस्वीरें हैं, बट those are his private collections and he never wanted them to get public. उसके अलावा उनकी कुछ पेंटिंग्स हैं, उन्हें अपनी पेंटिंग बनवाना काफी पसंद था।
Who was the artist, may I know?
Me, I made them. He was impatient, हमेशा देखने को बेचैन रहते थे कि मैंने क्या बनाया है।
कनक कबीर की शायरी में, उनकी नज़मों में, गज़लों में हमेशा एक दर्द, एक अजीब सी कश्मकश होती है। क्या आप बता सकती हैं ऐसा क्यों?
क्योंकि खुशी एक परिंदे की तरह है, उसे लफ्ज़ों में ढालना, कैद करना बहुत मुश्किल है, पर दर्द एक दिए की तरह है, जलते जलते अपनी लौ से नर्म रोशनी और गर्म काजल छोड़ जाता है। समझ लीजिए कि कबीर भी उसी जलती मोमबत्ती की तरह था, वो अपने काजल से वो सब लिख गया जो उसने महसूस किया।
हर एक मशहूर पोएट का, आर्टिस्ट का एक म्यूज होता है, कबीर का म्यूज कौन था?
म्यूज कोई एक इंसान नहीं होता, पर उनकी शायरी अक्सर उनकी एक ऐसी मोहब्बत के नाम से शुरू और ख़त्म होती है जो उन्हें कभी हासिल ना हो सके।
सो कनक, आपकी फैमिली, योर किड्स, आर दे हिज फैन टू?
जी, मेरी एक बेटी है, अडॉप्टेड है, एंड शी इज़ हिज बिग फैन। वो खुद भी कुछ लिखने की कोशिश करती रहती है।
तो कनक, ये जो कैफियत है, ये जो कबीर की कैफियत है जिससे आज आपने हमें मिलवाया, इस पर उनका कोई शेर, कोई शायरी आप सुनाना पसंद करेंगी?
जी बिल्कुल, उनकी एक गज़ल बड़ी अच्छी है, वो कहीं छपी नहीं है अब तक, पर वो उनकी डायरी में है, वही आपकी नज़र कर रही है।
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, नहीं ये नहीं आता कि जैसे तुझको बनाया गया हो मेरे लिए, पर ये जरूर आता है कि क्या मुझ जैसी ही कुछ कुछ कैफियत है तेरी। इतनी मुश्किल कश्मकश में मोहब्बत है मेरी। तू कोई पीर नहीं, लोग मुझे कहते हैं, भला तेरे बिना भी कोई इबादत है मेरी? आखिर मुझसे क्या शिकायत है तुझे? मैं रांझा और तू हीर सी बसारात है मेरी। तू मुझे छोड़कर चली जाए तो सह जाऊंगा, पर तू किसी और को चाहे तो अमानत में खयानात है तेरी। तुझे नजर भर देखूं मेरी औकात कहां, पर गर तू मुझे देख ले तो इनायत है तेरी, इनायत है तेरी। मैं फक्कर फकीर सही तुझको शाद रखूंगा, मैं फक्कर फकीर सही तुझको शाद रखूंगा, पेशगी पलकों का कालीन दिल इकामात है तेरी, इकामात है तेरी। तकदीर लिखी गई थी जब मेरे हाथ ना आया कुछ भी, एक तेरा प्यार, तेरी चाहत ही बस विरासत है मेरी। हर गली, मोड़, चौक, कोंचा, हर एक दरवाजा तेरी तलाश में, हर रोज तिजारत है मेरी, तिजारत है मेरी। तुझको हासिल हो मसर्रत के सभी साजो सामान, तुझको ना हो तो हो पर मुझको बस जरूरत है तेरी, बस जरूरत है तेरी। कल तेरे घर पे कोई चारा घर आया था, मैं दुआ में हूं अब कैसी तबीयत है तेरी? तूने खत में लिखा था तू नहीं चाहती मुझको, मौत आ जाती घर ना जानता, ये शरारत है तेरी। कल तेरी याद में जहर पी गया था मैं, कल तेरी याद में जहर पी गया था मैं, पर तेरी आस में ही उम्र सलामत है मेरी, सलामत है मेरी। तेरे चाहने वालों ने मुझे पत्थर भी बहुत मारे हैं, तूने पत्थर नहीं मारा, ये शराफत है तेरी। हर कोई देखकर मुझको बहुत हंसता है, पर रकीबों से नहीं कोई बगावत है मेरी। तेरा साया बन के दामन मुझे ढक लेता है, धूप के छालों पे मरहम सी मुरावत है तेरी, मुरावत है तेरी। जब मुझे दफन करेंगे लोग इस दुनिया के, जब मुझे दफन करेंगे लोग इस दुनिया के, कब्र पे नाम तेरा होगा, कब्र पे नाम तेरा होगा। और यही बस वसीहत है मेरी, वसीहत है मेरी, वसीहत है मेरी, वसीहत है मेरी।
बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। कबीर ने अपना ही नहीं, हम सबके दिल का दर्द भी बयां कर दिया।
तो सुना आप सबने, दो मोहब्बत करने वाले कैसे अलग तो हो गए मगर कभी जुदा नहीं हुए। वो एक दूसरे के लिए जीते रहे, लिखते रहे और उनके नाम को अपनी बातों में, अपने लफ्जों में जिंदा रखा। तो ये थी हमारी आज की कहानी, हमारा आज का किस्सा। और मुझे पूरा यकीन है कि ये दिल छू लेने वाली कैफियत ने आपको भी सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि आखिर जिंदगी इतने इम्तिहान क्यों लेते हैं।
तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं।